31 प्रातःकाल पूजा कर महाराज कंदमूल फल लेने के लिए वन में चले जाते। दिन भर वहीं रहते, शाम को लौटते। हम लोग सरोवर से पानी लाकर पर्णकुटी के लिए पाइप उताई पूजा की तैयारी आदि करने लगी। एक एक कर दिन बीतने लगे। हस्तिनापुर की स्मृति भी धीरे धीरे कम होने लगी। हस्तिनापुर छोड़े 2 वर्ष बीत गए थे। महाराज कुछ कृष्ण दिखाई देने लगे थे। बड़े विदाड़ी के कारण उनकी अवस्था अधिक लगने लगी थी। वे सदा ऐसा व्यवहार करने लगे मानो किसी गंभीर विचार में लीन हो। उनके मन की था पाना कठिन था। आवश्यकता से अधिक वे एक शब्द भी न बोलते थे, भूल कर भी हंसते न थे। एक दिन हिरण का एक बड़ा प्यारा छौना उनके पैरों के पास आया और अपने खुरदरी जीवा से उनके पैर चाटने लगा। मेरा अनुमान था कि वे धीरे से उसको दूर कर देंगे, लेकिन उन्होंने नीचे बैठकर बड़े स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसको अपनी गोद में लेकर बार बार चूमते हुए उसे छोटे बालक की तरह सिसकने लगे। मेरे मन में एक बड़ा भयानक विचार खौंध गया। अत्यधिक मानसिक कष्टों से क्या महाराज विक्षिप्त हो गए हैं? घबरा कर मैंने पूछा, यह क्या कर रहे हो? मेरी ओर न देखते हुए उस छौनों की चर्म पर अपना गाल रगड़ते हुए बोले, कुंती कैसे बताऊं? संतानहीन को जब इस लोक में ही कोई स्थान नहीं तो स्वर्ग में भला क्या स्थान मिलेगा? उसकी मृत्यु होते ही संसार उसका भूल नहीं जाएगा क्या? मैं दिग्विजय सम्राट नहीं बल्कि विधाता के राज्य का भिखारी हूँ। मेरे साथ ही मेरा नाम समाप्त हो जाएगा, इसीलिए आप क्या दुखी हैं? यदि यह बात है तो महर्षि दुर्वासा के मंत्र से मैं आपके नाम के लिए पुत्र निर्माण करूंगी। महर्षि दुर्वासा ने मुझको देवहूति मंत्र दिया है। मैंने महाराज को महर्षि दुर्वासा के यज्ञ की आवश्यकतानुसार जानकारी दी। कुंती, इस पांडु को अपयश के समस्त गर्तों से उबारने के लिए ही क्या विधाता ने तुमको मेरी पत्नी बनाया है? महाराज, शीघ्र ही आपको इस पांडुकुटी में इच्छित सद्गुणी पुत्र दिखाई देगा। मैंने यह विषय वहीं बंद कर दिया। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातः समय मैंने आचमन के लिए जल लिया और आंखें बंद कर ली। मंत्र के शब्द मेरे मन रूपी कुंभ में घर घर फिरने लगे। उनके प्रत्येक उच्चार के साथ ही मेरे शरीर को चेतना नष्ट होने लगी। सारे संसार का भार वहन करने वाली धरती का नाम स्मरण कर मैंने यम देवता का आह्वान किया। मेरे संपूर्ण अंग की एक ज्योति बन गई। धरती से एक ज्योति आई और उस ज्योति में से निकल गई, जाते समय तेज का संक्रमण कर गई। मुझको धीरे धीरे शरीर का ज्ञान होने लगा। कंदमूल और फलों पर पले हुए मेरे देह थर थर कांपने लगे। मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उस दिन से मैं बोलना बंद कर दिया। मुझको एकांत अच्छा लगने लगा, शांति और आकर्षण बढ़ने लगा। किसी का जोर से बोलना मुझको सहन नहीं होता था, फिर भी एक अनुभूत जीवन प्रारंभ हो गया। शरीर क्रमशः विकसित होने लगा। उचित समय के उपरांत एक दिन प्रतीक्षा में मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं माता बन गई। एक सौम्य और शांत चेहरे के बालक को जन्म दिया। सबके मुख आनंद से खुल उठे। सबने उसका नाम युधिष्ठिर रखा। युधिष्ठिर पर्णकुटी में बड़ा होने लगा। वह कभी नहीं रोता था, परंतु कभी हंसता भी नहीं था। नदी के कुंड की तरह उसकी मुद्रा सदा शांत रहती थी, आंखें विशाल थी। महाराज उसको खिलाने में अपने सद्भुत भूलने लगे। हम लोग हस्तिनापुर को तो भूल चुके थे, परंतु अब अपने दुखों को भी भूल गए। युधिष्ठिर एक वर्ष का हो गया। दूसरे वर्ष मुझको वायु देवता से एक और पुत्र प्राप्त हुआ। उसकी अंगयष्टि बड़ी सुंदर और भरकम थी। उसका हम सब ने भीम नाम रखा। वह वायु की तरह गतिमान था। वह क्षण भर में एक स्थान पर नहीं बैठता था। भीम के साथ इंद्रदेव से एक और पुत्र का वरदान मुझको मिला। सांवले रंग का यह बालक अत्यंत तेजस्वी था। ठीक दोपहर को उसका जन्म हुआ था। उसके से काले नेत्रों से तेज के स्फुलिंग बाहर निकलते थे। उसका नाम हमने अर्जुन रखा। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, उनकी किलकारियों से पर्णकुटी गुजरने लगी। मेरा जीवन सार्थक हो गया था। ऐसा संतोष मुझको होने लगा। ये क्या बनेंगे, क्या करेंगे, इस संबंध में धात्री और महाराज घंटों तक चर्चा करते रहते। धात्री सदैव कहती, यह भीम कभी भी किसी की बात नहीं मानेगा। जो इसके सामने आएगा उसी को पीटेगा। यह क्षण भर भी चुप रहना बैठना जानता है क्या? लेकिन इन सब बातों को माधुरी एक कोने में बैठकर चुपचाप सुनने लगी। वह किसी से कुछ न कहती। उसका अपना अलग संसार बनने लगा। वह क्यों दुखी थी यह मैं जान गई। स्त्री को स्त्री का दुख जानने में देर नहीं लगती। उसको संतान की चाह थी। सरोवर के किनारे एक बार मैंने उसे पूछा, माधुरी तू पुत्र के लिए दुखी है क्या? उत्तर देने के बजाय मुझसे लिपट कर वसी सकने लगी। उसकी पीठ पर थपथपाते हुए मैं बोली, माधुरी तू कुरकुल की वधु है, इस तरह मत रो, तुझको भी पुत्र होंगे। मैंने सरोवर में से अंजलि भरकर जल लिया और आंखें बंद कर महर्षि दुर्वासा का स्मरण किया। माधुरी को सामने बैठा कर मैंने उसके हाथ पर पानी छोड़ा। धड़ाधड़ मंत्र बोलने लगे। जैसे तरकश के बाहर निकल जाते हैं वैसे मेरा शरीर रिक्त होता जा रहा था, ऐसा मुझको लगने लगा। मंत्र पूरे हो गए, मैंने आंखें खोली। माधुरी से पूछा, अब तुझे मंत्र के शब्द याद हैं क्या? उसने हाँ कहकर सिर हिलाया। मैं भी मंत्रों के शब्द को याद करने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन मुझको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। स्मृति के कोने कोने को मैंने झकझोर कर देखा, लेकिन कहीं से भी मंत्र का प्रत्युत्तर नहीं आया। आज कुंती ने अपनी अंतिम शक्ति भी दूसरे को अर्पित कर दी थी। अब वो एक साधारण स्त्री थी, एक तुच्छ स्त्री थी। पुत्र और पति ही उसकी संपत्ति थी। उसकी कस्तूरी निकाल ली गई हो, ऐसे मृग की तरह मैं सरोवर से पर्णकुटी की ओर लौटी। आगे चलकर माधुरी को 2 पुत्र हुए। उसके नाम नकुल और सहदेव रखे गए। अब पर्णकुटी में 9 प्राणी रहने लगे, महाराज, माधुरी, मैं, धात्री और 5 कुमार। हस्तिनापुर छोड़े हमको 10 वर्ष हो गए थे। पर्वती पवन की तरह काल दौड़ रहा था। इन 10 वर्षों में कुरुकुल का क्या हुआ, हस्तिनापुर का क्या हुआ, इसका कुछ भी पता हमको न चला। जिस पर्वत पर हम रहते थे वह दुर्गम था और उस दिशा में सहसा कोई भी अरण्य में प्रवेश नहीं करता था। बाहर के जगत से हमारा संबंध विच्छिन्न हो गया था। बाहर का संसार हमारे लिए स्वप्न भूमि था या अरण्य हमारा भवन था। यहाँ के भिन्न भिन्न प्राणी ही हमारे साथी थे, पक्षियों का संगीत ही हमारा मनोरंजन था, हम लोग अरण्यवासी मानव हो गए थे। 32. स्त्री पुत्रों के साथ अरण्य में विश्व का निर्माण कर सकती है, और हम तो 3 स्त्रियां थी। हमारा सारा समय बालकों के साथ खेलने में, उनकी तोतली बात सुनने में और बात बोलने में व्यतीत होने लगा। वे सब छोटे थे लेकिन समझदार थे। अकेला भीम ऐसा था जो कभी कभी हमारे वश में नहीं रहता था। किसी विशाल हाथी की पुष्ट शुंड जैसे निरंतर इधर उधर हिलती रहती है, वैसे वह इधर उधर दौड़ता ही रहता। वह पल भर शांत नहीं बैठता। अनुदिन उसका शरीर सुगठित होता हुआ अधिक हृष्ट पुष्ट दिखाई दे पड़ने लगा। वे मेरे पांचों कुमार वन्य गायों का दूध पीते हुए और फल खाते हुए बड़े हो रहे थे। सनसन करता हुआ वन पवन बंशी बजाकर उनको सिखाने लगा। उनकी किलकारियों से पर्णकुटी गुंजायमान होने लगी। धात्री के नीरस वृद्ध स्त्री हृदय में भी प्रेम की कोपलें फूटने लगी। वह भी सबके साथ खेलने लगी। ऊपर नीला आकाश और नीचे हरी भरी धरती, ऐसे वातावरण में वे पांच जीव सागवान पौधों की तरह बढ़ने लगे। सौंदर्य संपत्ति और कीर्ति से अधिक स्त्री को अपने पुत्र प्यारे होते हैं। दो रेशमी होंठ चिचोड़ते हुए जब उसका दूध पीने लगते हैं तब उसको अपना जीवन धन्य लगने लगता है। मातृत्व ही स्त्री का मोक्ष है। अब मैं पुनः सुख के शिखर पर थी। जीवन सुख दुख की धूप छां का खेल है। यह अरण्य भी अब हमारा राज्य था। किसी को रौदे भी ना मिला हुआ राज्य, मैं उस राज्य की महारानी थी। हमारी गोद में बालकों को क्रीड़ा करते हुए देखकर महाराज अपना भी दुख भूल गए। उन पांच बालकों को खिलाते समय वे अपनी प्राणघाती शाप को भी भूल गए थे। वे पहले की तरह हंसने लगे, मुक्त मन से बातें करने लगे। 33. वर्ष के बाद वर्ष बीतते गए। बालक बड़े होने लगे। अरण्य में निर्भय होकर विचरण करने लगे। वे जहाँ कहीं जाते मिलकर रह जाते। उनकी क्रीड़ाओं के लिए शतशृंग पर्वत भी कम पड़ने लगा। भीम तो लौटते समय बाघ के बच्चों को उनके कान पकड़कर खींचता हुआ लाने लगा। मनुष्य का जीवन आसपास के वातावरण पर अवलंबित होता है। जिनका जैसा साथ प्राप्त होगा मनुष्य का वैसा ही रूप ग्रहण करेगा। छोटे बालक तो अनुकरण प्रिय होते ही हैं। हमारे बाद अरण्य उनको भी जो कुछ सिखाता था वह उसके संस्कार थे। वे उन प्राकृतिक संस्कारों के बीच बड़े होने लगे। अब वे 10-12 वर्ष के हो गए थे। अरण्य की नदियाँ उनको यह सिखाने लगी कि जीवन सदा बहता रहना चाहिए। संचित जीवन के लिए पोखरों से उनका परिचय नहीं था। वहाँ के ऊंचे ऊंचे शिखर उनको शिक्षा देने के लिए तुम भी ऐसे ही ऊंचे बनो, ऊपर नीला आकाश उनको मन स्वच्छ रखने का पाठ पढ़ाने लगा। वहाँ के विभिन्न प्राणियों की छाया देने वाले वृक्ष उनको संसार के लिए तिल तिल कर गलने का संदेश देने लगे। पक्षियों की ऊंची उड़ाने उनके साहस को चुनौती देने लगे। वे सदा शास्त्र प्रश्न पूछकर हमारे नाक में दम कर देते। युधिष्ठिर मुझसे पूछता, मात, आकाश का यह नीला नीला गुंबद पृथ्वी पर किसने रख दिया? इसके खंभे कहाँ हैं? मैं उससे कहती, बेटा, पहले समस्त देवताओं के लिए भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकले हुए विष का प्राशन किया था। विष पीने से भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया था, यही वह आकाश है। अर्जुन मुझसे पूछता, मात, कौन जब वेग से बहने लगता है तब सू सू की ध्वनि क्यों होती है? मैं कहती, अर्जुन, पहले भगवान रामचंद्र एक नामक एक बहुत बड़े धनुर्धर हो गए हैं। उन्होंने राक्षसों को मारने के लिए जो बाण छोड़े थे वे इतने वेगवान थे कि उनको कोई भी नहीं रोक सका। उनके बाण कुछ भी अब भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, जिनके पुच्छों की ध्वनि है, यह विचारों में लीन हो जाता। भीम मुझसे पूछता, मात, ये पहाड़ कैसे तैयार हो गए? मैं उसे कहती, भीम, भगवान रामचंद्र के समय में हनुमान नामक एक महाबलवान सेनापति थे। वे सदा आकाश में घूमते रहते थे। एक बार उनकी पृथ्वी पर आने की इच्छा हुई, लेकिन पृथ्वी तो उस समय दलदल ही दलदल थी। इस दलदल से मैं हनुमान जी ने पैर रखा। उनके पैर जहाँ पड़े वह गहरी खाई बन गई, शेष भाग फूल कर ऊपर आ गया। यही वह पहाड़ हैं, वही ये पर्वत हैं। इस दलदल में चलते चलते हनुमान जी उब गए। वे फिर आकाश में उड़ने लगे। उनके पैर से एक बड़ा ढेला चिपट गया, वही यह चंद्रमा है। वह मुंह फाड़ कर सब सुनता रहा। फिर गाल और आँख खुलाकर हनुमान कितने बड़े होंगे यह कल्पना करता हुआ नकल उतारने लगा। नकुल और सहदेव मुझसे पूछते, मात, आकाश में बिजली क्यों चमकती है? मैंने उसको देती, आकाश में देव और दानव में युद्ध हो रहा है। उस युद्ध में देवताओं के हाथ में चमचमाते हुए खड्ग हैं ये। नकुल अपने हाथ फिराकर बनावटी वार सहदेव पर करता। ऐसे अनेक प्रश्न बालक मुझसे पूछते, मैं जो कुछ कह देती उसी को वे मान लेते, उसी में उनका समाधान हो जाता। 34. हमारे दिन आनंद से बीतने लगे। इस शतशृंग पर्वत को छोड़ने की हमारी इच्छा नहीं होती थी। मनुष्य जहाँ रहने लगता है वह स्थान के प्रति श्रद्धालु हो जाता है, उस स्थान के प्रति वह निराला अपनत्व तो अनुभव करने लगता है। शतशृंग पर्वत अब हमारा स्थायी निवास स्थान था। बहुत संभव था किसी पर्वत के नटखट पवन में मेरी अंतिम सांस विलीन जाती। उसका दुख मुझको कभी नहीं होता, क्योंकि इस पर्वत ने ही हमारा पोषण किया था। लगभग 18 वर्षों तक अपनी गोद का सहारा दिया था। परंतु कालपुरुष जैसा मनमौजी अंग्रेज भी इस संसार में कोई नहीं होगा। कितनी जल्दी बदलता है यह संसार के रंग, क्षण भर में कुछ का कुछ कर देता है। पृथ्वी के बीच पर आनंद से चहचहाते नगरों को क्षण भर में अजगर की तरह निकल जाता है। हजारों वर्ष कष्ट उठाकर मनुष्य जिस संस्कृति का निर्माण करता है उसको यह कालपुरुष ऐसे ढा लेता जैसे समुद्र के किनारे छोटे बालक द्वारा बनाया गया बालू का किला लहर आते ही अपने आप ढह जाता है। यह जगत का एक और राजतंत्र नहीं है, सुसंगति और सुसूत्रता यहाँ कहाँ होती है? कौन है जो इन समस्त घटनाओं के पास फेंकता है? इन सब खिलौनों को कौन नचाता है? मनुष्य का जीवन इस विशाल ब्रह्मांड की कितनी क्षुद्र वस्तु है। विश्व की प्रगति में आमूलचूल परिवर्तन कर देने वाले काल को मनुष्य का जीवन एक बुलबुला सा लगता होगा, जिसको चाहे जब फोड़ दो, ऐसा पाने का बुलबुला। इस बुलबुले के निर्माण से जगत में कोई वृद्धि नहीं होती और उसके फूटने से कोई कमी नहीं आती। विश्व जैसा स्थित है वैसा ही रहता है, परंतु इस बुलबुले के फूटने से मानव के जीवन में कभी कभी जल तरंगे अवश्य उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी वे बड़ी भयानक होती है, वे जीवन पर से मन का विश्वास नष्ट कर देती हैं, श्रद्धा को जलाकर राख कर देती हैं। संसार में ईश्वर नाम की कोई शक्ति शेष है या नहीं, यह प्रश्न उत्पन्न कर देती है। मन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, चारों ओर धधकते हुए दावानल में पड़े हुए पक्षी की तरह वह असहाय होकर तड़पने लगता है। एक घटना से मेरी यही दशा हो गई। एक दिन माद्री पानी लेने के लिए सरोवर की ओर गई हुई थी। थोड़ी देर बाद महाराज भी सदैव की तरह वन में गए। आधी घड़ी बाद ही माद्री लौट आई, लेकिन उसके हृदय विदीर्ण कर देने आक्रोश और मर्म भेदी चित्कार से घबराकर मैं पर्णकुटी से बाहर निकली। उसके हाथ में पानी का घड़ा नहीं था। अपनी छाती पीटती हुई और बालों को नोचते हुए पागलों की तरह जी 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 चिल्लाते हुए वायुवेग से दौड़ती आ रही थी। बड़ी कठिनाई से देह के वस्त्रों का भी उसको ध्यान नहीं था। उस समय यदि कोई उसके सामने आ जाता तो वह उससे टकरा कर निश्चय धड़ाम से नीचे गिर जाती। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भय की सनसन करती एक शेरन मेरे सारे शरीर में दौड़ गई। क्या हो गया माद्री को? जल के लिए वह जो घड़ा ले गई थी उसका क्या हुआ? पांचों कुमार सुरक्षित हैं या? मेरे पास आते ही वह मेरे ऊपर गिर पड़ी। वह केवल जी 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 कहकर चित्कार कर रही थी। आनू पकड़कर ऊपर उठाते हुए मैंने उससे पूछा, माद्री रो क्यों रही है? घड़ा कहाँ गया? घड़ा फूट गया, कहकर उसने जोर से लिपट गई। उसका शोकावेग कुछ कम दिखाई पड़ते मैंने पूछा, माद्री तो वीर कन्या है, छोटे बच्चों की तरह रो क्यों रही है? क्या हुआ यह बता। जी जी महाराज, यह कहते हुए मेरी छाती से चिपट गई। कितनी आर्द्रता थी उसके आलिंगन में, वैसे उसका हृदय बड़े जोर से धड़क रहा था। महाराज को क्या हुआ? बोल माद्री, महाराज कहाँ है? मैं चीखी सरोवर के किनारे। इन शब्दों को सुनते ही कान उठाए चौकन्ने खड़े बछड़े सी मेरी दशा हो गई। माद्री को दूर हटाकर मैं सरोवर की ओर दौड़ने लगी। माद्री मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगी। सरोवर के किनारे आते मैंने जो कुछ देखा वह विश्व की सत्यता पर से मेरा विश्वास नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त था। मेरा प्राण पिए साथी लकड़ी कुंदे की तरह निश्चल पड़ा था। उसके देह में पूर्वंश का रक्त संचरण कर रहा था और जो साक्षात सूर्यदेव को भी लज्जित करने वाला था, ऐसा उनका रूप आग में जलती हुई लकड़ी की तरह काला पड़ गया था। वे मूर्छित होंगे यह सोचकर उनको हिलाने के लिए मैंने उनके देह को हाथ लगाया। मेरा रोम रोम से यार उठा। उनका शरीर बर्फ सा ठंडा था। तत्क्षण उठकर मैंने माद्री से पूछा, माद्री यह कैसे हो गया? वो फिर भर्राई हुई आवाज मकाने लगी, जी जी मेरा कोई देश नहीं है। मैं घड़े में जल भर कर सरोवर से निकल रही थी। महाराज सरोवर के किनारे खड़े थे। हवा से मेरा आंचल उड़ रहा था, लेकिन सिर पर घड़ा रखे होने कारण मैं उसको सवार नहीं पा रही थी। मैं सरोवर से बाहर आई। महाराज हंसते हुए खड़े थे। उन्होंने एकदम परशु हाथ से नीचे फेंक दिया। उनकी आंखों में विचित्र भाव तैर रहे थे। वे जैसे पास पहुंचे उन्होंने मुझको अपने लिंगन में कस लिया। मेरे सिर पर रखा हुआ घड़ा धड़ाम से नीचे पड़ा। उनकी कामी आंखें आग बरसा रही थी। मुझको अंग में भरते हुए उन्होंने माद्री माद्री कहकर मुझ पर चुंबनों की वर्षा कर दी। मैंने उसके बंधन को छुड़ाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वह न छूट सकी। क्षुधित पति मनुष्य जैसे अन्न पर टूट पड़ता है, वैसे वे मुझ पर टूट पड़े थे। उनके दृढ़ आलिंगन से मेरा दम घुटने लगा। क्षण भर बाद वे चैतन्य हो गए। उन्होंने मुझको ऐसे दूर उठाया जैसे कोई विषैली नागिन को ढकेलता हो। लेकिन क्षण भर में उनका रूप बदलने लगा। उनकी आंखें फिरने लगी। खड़े खड़े वे धड़ाम से नीचे गिर पड़े। प्राणों के भय से बुरी तरह हाथ पर पटकने लगे। माद्री माद्री कहकर तड़पने लगे। मैं भय से सुन्न हो गया। दौड़ते हुए तुम्हारे पास आई। मैं तड़ाक से माद्री के मुंह पर तमाचा मारा। वह जोर से क्रंदन करने लगी। मेरे कानों में किंदम ऋषि के शाप गूंजने लगे। राजा, तूने एक प्रणयी को अपनी प्रेयसी से दूर कर दिया है। भविष्य में जब तू अपनी स्त्री को इस तरह अंक में लेगा, तब तू भी मेरी तरह तड़प तड़प कर मर जाएगा। मेरा जीवन साथी मुझको छोड़कर अनंत यात्रा पर चल पड़ा था। मोह का केवल एक ही क्षण ये उसकी जीवन की हरियाली में से मृत्यु के शमशान में खींच ले गया। कुंती के देह में शन शक्ति के कौन सड़ों यह जानने के लिए केवल एक क्षण ही उसको विधवा कर दिया था। दिग्विजयी संयम में सम्राट आज भावनाओं के राज्य का एक दुर्बल भिखारी निकला। अनेक वर्षों तक मन को संयम में रखकर आचरण करने वाला योगी एक केवल एक क्षण में दुर्बल मन का भोगी बन गया था। काम वासना बर्फ की ऐसी छलनामयी खाई है जहाँ मनुष्य का पैर चाहे जब फिसल जा सकता है। काम भावना वह बिजली है जो किसी भी समय देह पर गिर कर प्राण ले सकती है, या वह अनल है जो अपने साथ औरों को भी जलाकर राख कर देती है। मेरे संयम के पास टूटने लगे। मैं महाराज कहकर चीखते हुए धड़ाम से महाराज के शव पर गिर पड़ी। उनकी छाती पर सिर पर टकने लगी। मेरे भाल पर लगा तो वह कुमकुम तिलक पूछ गया। 35 धात्री दहन की तैयारी करने लगी। उसने चिता रखी। एक दिग्विजयी राजा की अंतिम चिता निर्जन अरण्य में सरोवर के किनारे रच गई। दया मुझको क्या क्या दिखाना चाहता था। 42 वर्ष की अवस्था में मैं विधवा हो गई थी। पति के बिना स्त्री का जीवन भी ऐसा ही है जैसे ज्योति के बिना बत्ती। आज मेरा अस्तित्व ही क्या था। एक महामान्य यादवराज की माननी पुत्री, कौरवों के वैभवशाली महारानी, इस अरण्य की वनरानी, कल अपने पराक्रम से जो जगत को संदिप्त कर देंगे ऐसे पुत्रों की भाग्यशाली माता। छी छी, मैं इनमें से कुछ भी नहीं थी। अपने पति के निधन से जिसके प्राण निकल गए थे, ऐसी एक निष्प्राण देह थी मैं। एक अभागिन विधवा थी। विधवा, कितना भयानक है यह शब्द। महाराणी, विधवा और युवती, छी, इनमें क्या समता थी। मेरा जीवन आखिर है क्या। एक मोड़ के बाद दूसरा मोड़ लेती हुई यह जीवन सरिता कहाँ जाएगी। क्या है कुंती के भविष्य में। छी, चतुर ज्योतिषी स्वयं ब्रह्मदेव भी क्या जानते हैं। दुर्भाग्य के तप्त आघात सहने के लिए धैर्य कहाँ से लाऊं। इस अरण्य में धैर्य और सांत्वना के दो शब्द मुझसे कौन कहेगा। चारों ओर जब गगनमंडल ही टूट कर गिरने लगे तो मनुष्य आश्रय के लिए कहाँ जाए। मैंने एक अबोध शिशु को अपने हाथों से मृत्यु की गोद में सुला दिया था। कहीं इसीलिए तो मृत्यु अपने काले दांत किटकिटाकर मुझको उसका कठोर दंड नहीं दे रही थी। आगे भयानक खाई और पीछे घोर अरण्य। मेरा जीवन क्या ऐसा ही नहीं था। बचपन में मैं पिताजी के हाथ का खिलौना थी। भोजपुर में मैं दुर्वासा के हाथ का खिलौना बनी और आज मैं असीम वेग से दौड़ने वाले काल के हाथ का खिलौना बन गई हूँ। उसके साथ दौड़ते समय निश्चय ही मेरा हृदय फट जाएगा। किसका अवलंबन लेकर अब मैं जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ूं। मेरा मन, आह, अब मेरे मन था ही नहीं, और यदि वो भी तो वह बारा था। भूत, भविष्य, वर्तमान, कुछ भी नहीं, वह नहीं समझता था। काल चिते का रूप धारण कर अर्धमृत कुंती के जीवन की अजा को पीठ पर डाले उन्मत्त गति से बढ़ता जा रहा था। मैं चुप थी। मेरे रोने की भी इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे जमे हुए हृदय से आंसू बाहर नहीं निकलते थे। भावनाएं इतनी भी द्रवित नहीं होती थी कि रुदन फूटे। धात्री ने महाराज का शव चिता पर रख दिया। उस पर लकड़ियां रखी। दासी ने चिता में अग्नि दी। शत्रुओं को भय से थरथर कपाने वाले एक पराक्रमी और दिग्विजयी योद्धा को एक दासी ने अग्नि दी। चिता जलने लगी। ज्वालाओं के पक्षी चटचट करते हुए आकाश में उड़ान भरने लगी। मेरा मन सुन्न हो गया। उस चिता में प्रविष्ट होने का निश्चय कर मैं उठ खड़ी हो गई। अब इस निरर्थक जीवन का उपयोग भी क्या था। मैं निश्चय से आंचल खोसा। इतने में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए सरोवर में स्नान कर आए हुए मद्री ने मेरे चरणों को हाथ लगाया और उसको माथे पर से पीछे ले गई। एक क्षण भी पीछे मुड़कर न देखते हुए मैं क्या कहना चाहती हूँ या सुने बिना ही वह एकदम सीधे उस अग्नि में प्रवेश कर गई। क्षण भर में उसका श्वेत वस्त्र भभक कर जल गया। पूर्व में बाण लगे पक्षी की तरह मेरा मन तड़प उठा। मैंने उसके मुंह पर तमाचा मारा था। मैंने उसको भावना के राज्य की दुर्बल स्त्री समझा था, लेकिन कितनी तत्परता से उसने निर्णय कर लिया था। किंतम ऋषि को अंगूठा दिखाते हुए उसने अपने प्रियतम द्वारा दिए गए आलिंगन को मृत्यु का मूल चुकाकर चिता पर ही छोड़ा नहीं था। अब किसी का शाप उसको अपने प्रीतम के आलिंगन से अलग नहीं कर सकता था। मैं भी उसी का मार्ग अपनाने के लिए सन्नत हुई। उसी समय पर कुटी से दौड़ कर आते हुए पांचों कुमार मेरी कमर में लिपट गए। मुझको झकझोरते हुए पूछने लगे, माता, पिताजी कहाँ हैं। नकुल और सहदेव दयनीय मुख से रुआ से होकर कहने लगे, हमारी छोटी माँ कहाँ है। उनको देखते ही मेरा बधिर मन द्रवित हो गया। मैं भी यदि उसी चिता में कूद पड़ती हूँ तो इन पांचों बालकों को लेकर यह धात्री कहाँ जाती। केवल एक पुत्र के त्याग की वेदना ही मुझको रातों में चैन नहीं लेने देती थी। वह मेरा पाप था या पुण्य, यह भी मैं नहीं बता सकती थी। परंतु इन पांच निराधार बालकों को छोड़कर यदि मैं चिता में कूद पड़ती तो निश्चय ही वह पाप होता। मैंने उन सबको सहसा अंक में भर लिया और जोर जोर से रोने लगे। जैसे विहग शिशु पक्षिणी से लिपट कर जाते हैं वैसे ही वे मुझसे लिपट गए। मेरा अपना कोई भी निर्णय नहीं रहा मरने का भी। जल जल कर चिता शांत हो गई। राख हवा में उड़ने लगी। कल तक मुझसे सुख दुख की बातें करने वाले दो प्राण आज कहाँ चले गए थे। मृत्यु जीवन नदी का ऐसा दुर्गम भंवर है जिसको कोई पार कर ही नहीं सकता। विश्वकर्मा के अविरत दौड़ने वाले रथ का वह सबसे अधिक उछिंकल घोड़ा है। आज तक न उसने जाने कितने जीवन अपनी टोपी के टापों के नीचे रौद डाले होंगे। आज उसकी दृष्टि मेरी पर्णकुटी की ओर मुड़ गई थी। किंतम ऋषि के शाप के रूप में और माद्री के निश्चय के रूप में उसने आज मुझको छिन्न भिन्न कर दिया था। संसार के आज तक के मृतकों से मृत्यु का काला भंडार कभी भरा नहीं था। उसने दो प्राणियों की वृद्धि और कर ली थी, लेकिन मेरा भाल बिल्कुल रिक्त कर दिया था उसने। मैं चिता के पास गई और उसके राख मैंने अपने सिंदूर रहित मस्तक पर पोत ली। उस राख में यदि एक अभागिन महारानी के दुख के दग्ध अश्रु थे तो एक प्रेयसी की मृत्यु को भी जीत लेने वाले आनंद के अश्रु भी। साथ ही एक विजयी राजा के पराजित रक्त बिंदु थे और माद्री के साथ ही दग्ध हुए दुर्वासा ऋषि की देवाहुति मंत्र के जले हुए अमृत शब्द थे।